बुधवार 13 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। डिसेबिलिटी समर्थकों ने फेडरल बजट में NDIS यानी नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है। इन बदलावों के तहत 2030 तक 1,60,000 से अधिक लाभार्थियों को स्कीम से बाहर करने की योजना है। इन बदलावों का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में लगभग $38 बिलियन की बचत करना है। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसेस भी लागू किया जाएगा। डिसेबिलिटी एडवोकेसी नेटवर्क की चेरी बेलोसिस ने SBS को बताया है कि इस बदलाव से बनने वाले गैप को भरने के लिए एक मजबूत और उपयुक्त ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे स्किल्ड प्रवासियों को फेडरल बजट में घोषित माइग्रेशन प्रोग्राम के बदलावों से फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार 1,85,000 परमानेंट माइग्रेशन प्लेसेस में से 70% से अधिक जगह स्किल्ड वर्कर्स के लिए रखी गई हैं। इनमें से 2/3 से ज़्यादा वीज़ा उन प्रवासियों को मिलेंगे जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। वहीं ऑफशोर यानी बाहर से आवेदन करने वाले स्किल्ड एप्लीकेंट्स के लिए केवल 55,000 जगह आरक्षित की गई हैं। बजट पेपर्स के अनुसार ये बदलाव नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। साथ ही रिवाइज पॉइंट्स टेस्ट में युवा, हाईली स्किल्ड और बेहतर एजुकेटेड माइग्रेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। फेडरल बजट में ये भी पुष्टि की गई है कि 2025-26 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन का आंकड़ा 2,95,000 रहेगा, जो पिछले साल के बजट फोरकास्ट से 35,000 ज़्यादा है। 3 साल पहले न्यू साउथ वेल्स के एक नर्सिंग होम में एक 95 वर्षीय महिला की मौत के बाद अब डिमेंशिया पेशेंट्स की देखभाल और एग्रेसिव घटनाओं पर प्रतिक्रिया को लेकर न्यायिक जांच शुरू की जाएगी। मई 2023 में यलम्बी लॉन्च में तत्कालीन सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट द्वारा टेजर चलाने की वजह से क्लेयर नोलैंड की मौत हो गई थी। उन्हें डिमेंशिया के लक्षण थे, वो गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट लगने से दिमाग में खून बहने लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 2024 में सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट को मैनस्लॉटर का दोषी पाया गया था और बाद में उन्हें 2 साल के गुड बिहेवियर बॉन्ड की सज़ा सुनाई गई। विक्टोरियन सरकार ने मेलबर्न के हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज में सुरक्षा बढ़ाने के लिए $15 मिलियन की घोषणा की है। ये फैसला हाल ही में हुए कई आर्सन अटैक्स की घटनाओं के बाद लिया गया है। इस फंड का उपयोग सिक्योरिटी कैमरास, दरवाजों, अलार्म्स और फायर सप्रेशन सिस्टम्स को अपग्रेड करने में किया जाएगा। वेन्यूज को ये विकल्प भी दिया जाएगा कि वो अपने CCTV के लाइव फीड्स सीधे पुलिस को स्टेट कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के जरिए उपलब्ध करा सकें, जो 24 घंटे संचालित होता है। विक्टोरिया पुलिस मिनिस्टर एंथनी काबिन्स ने कहा है कि ये फंडिंग रिस्पॉन्स टाइम्स को बेहतर बनाएगी और आगे होने वाले हमलों को रोकने में मदद करेगी। लॉस एंजलिस के एक सबर्ब के मेयर ने स्वीकार किया है कि वो चाइना के लिए फॉरेन एजेंट के रूप में काम कर रही थीं। 58 वर्षीय एलिन वैंग, जो आर्केडिया की मेयर हैं, ने इस मामले में एक फेलनी चार्ज के लिए दोष स्वीकार करने पर सहमति जताई है। इस आरोप में अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वो 2020 से 2022 के बीच ऑनलाइन चाइनीज प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रही थीं। वो बताती हैं कि उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट हैंडलर्स के निर्देश पर प्रो चाइना पोस्ट किए थे, जिनमें शिनजियांग में वीगर के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से इनकार करना भी शामिल था। और अब खबर भारत से। केंद्र सरकार ने सोना और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इस फैसले के बाद MCX पर सोना करीब 10,000 रुपये और चांदी लगभग 18,000 रुपये तक बढ़ गए। सरकार ने सोने और चांदी पर 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेशी खरीद कम करना, ट्रेड डेफिसिट घटाना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से 1 वर्ष तक सोने की खरीद से बचने की अपील भी की थी। ये था आज का न्यूज़ फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें। SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, TV चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।